नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की 1988 से 1990 के बीच लिखी गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
जी, और ये चर्चा सीधे पूज्य गुरुदेव के अपने शब्दों पर आधारित होगी जो उन्होंने साहित्य के बारे में कहे थे।
हाँ, मतलब हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि पूज्य गुरुदेव ने इसे इतना जरूरी क्यों माना, इतना असाधारण।
बिल्कुल, चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि पूज्य गुरुदेव ने इसे अपने पूरे लेखन का मक्खन कहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
हाँ, मक्खन मतलब जो सबसे सारगर्भित चीज है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो उनका पिछला महत्वपूर्ण ग्रंथ था गायत्री महाविज्ञान।
हाँ हाँ, गायत्री महाविज्ञान
जी,
उसे भी उन्होंने कहा कि फिलहाल किनारे रख दो। उनका वाक्य था, आवश्यकता और समय के अनुरूप गायत्री महाविज्ञान मैंने लिखा था, अब इसे अलमारी में बंद करके रख दो।
अब केवल इन्हीं पुस्तकों को पढ़ना, ये बहुत बड़ा बयान था।
ये बहुत बड़ा बयान था।
ये दिखाता है कि उस समय इन पुस्तकों की कितनी ज्यादा अहमियत थी उनके अनुसार।
सही कहा, जैसे जैसे कोई तात्कालिक जरूरत आ पड़ी हो।
शायद यही ये मक्खन वाली बात और गायत्री महाविज्ञान को मतलब एक तरह से कुछ समय के लिए रोकने का निर्देश, ये दोनों ही दिखाते हैं कि ये साहित्य कितना सघन था और उस समय की जरूरत के हिसाब से कितना अनिवार्य था।
अच्छा,
शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि पिछला साहित्य नींव बना रहा था, पर ये जो मक्खन है ये क्रांतिधर्मी साहित्य है, ये उस वक्त के लिए तुरंत जरूरी था, एकदम सार जिसे फौरन अपनाया जा सके।
और इसी महत्व को दिखाते हुए उन्होंने इसे इस युग की युग गीता भी कहा।
जी हाँ, युग गीता। जैसे गीता ने अर्जुन का मोह दूर किया था, उनका मानना था कि ये साहित्य इस युग के लोगों के भ्रम, उनके द्वंद्व मिटा सकता है।
मतलब आज की समस्याओं का समाधान देने वाला मार्गदर्शन।
बिल्कुल, और ये परिवर्तन कैसे आएगा इस पर भी उन्होंने बहुत साफ कहा।
हाँ, उन्होंने कहा कि ये शक्ति उनके विचारों में है, किसी सिद्धि या चमत्कार में नहीं। उनका वाक्य याद है, हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में समाहित है।
दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वो सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं।
विचारों पर इतना जोर देना ये अपने आप में खास बात है।
हाँ, क्यों महत्वपूर्ण था ये विचारों पर इतना जोर?
ये इसलिए खास है क्योंकि ये दिखाता है कि वो बदलाव का एक एक सामूहिक रास्ता बता रहे थे। देखिए, सिद्धियां तो व्यक्तिगत होती हैं, है ना?
हाँ, सही बात है।
पर विचार, सशक्त विचार तो पूरे समाज को, जनमानस को बदल सकते हैं। शायद वो 1988-90 का समय ही ऐसा था जब एक वैचारिक क्रांति की जरूरत थी
और ये पुस्तकें उसका माध्यम बनी।
हाँ, उनका मानना था कि असली बदलाव सोच बदलने से ही आएगा।
और इसी सोच को फैलाने पर उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा जोर दिया, सिर्फ पढ़ना नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बार बार पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना।
हाँ, उन्होंने कहा, बेटे ये 20 किताबें 100 बार पढ़ना।
100 बार, और कम से कम 100 लोगों को पढ़ाना, और फिर वो 100 लोग आगे 100-100 को पढ़ाएं। श्रवण कुमार का उदाहरण भी दिया उन्होंने।
जी, कि जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर गए थे, वैसे इन विचारों को घर घर तक पहुंचाना है, ये उनके मिशन का कह सकते हैं केंद्र बन गया था।
बिल्कुल, और वसंत पंचमी 1990 को उन्होंने वंदनिया माताजी से जो कहा वो तो सीधे सीधे इसी तरफ इशारा करता है।
हाँ, उन्होंने कहा, मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा, मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मतलब ये साहित्य ही उनका जीवित ज्ञान स्वरूप था,
उनकी विरासत एक तरह से।
हाँ, और इसी को फैलाना, उनकी विरासत को जीवित रखना था, इसीलिए तो उन्होंने इस पर कोई कॉपीराइट नहीं रखा।
अच्छा, ये भी एक कारण था।
जी हाँ, ताकि ये विचार बिना किसी रुकावट के आसानी से सब तक पहुंच सकें, ये एक सोचा समझा कदम था।
गुरुदेव के शब्दों में ही ये 1988-90 की पुस्तकें उनके पूरे जीवन के अनुभव का और 1940 से लेकर तब तक के सारे साहित्य का निचोड़ थीं, सार थीं।
उन्होंने इसे उत्तराधिकारियों के लिए वसीयत भी कहा और जीवन को, चिंतन को बदलने के सूत्र, यहाँ तक कि तराजू के पल्ले का उदाहरण देकर कहा कि वैचारिक वजन में ये उनके पिछले सारे साहित्य से भी भारी हैं।
अविश्वसनीय है।
तो संक्षेप में कहें तो पूज्य गुरुदेव के लिए ये क्रांतिधर्मी साहित्य सिर्फ पुस्तकें नहीं थी, ये महाकाल की प्रेरणा थी, युग बदलने के लिए जरूरी विचार थे,
उनकी जीवंत विरासत।
हाँ, और भविष्य के लिए एक साफ दिशा निर्देश, अनुयायियों के लिए एक अनिवार्य आत्मिक भोजन, जो पहले दिए गए सूप यानी दूसरे साहित्य से कहीं आगे की चीज थी।
पूज्य गुरुदेव ने इन विचारों को क्रांति के बीज कहा था कि जब ये फैलेंगे तो अगले दिनों धमाका करेंगे।
जी,
तो ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर लाता है। आज के समय में इन विचारों की क्या प्रासंगिकता है? क्या इन क्रांति के बीजों में आज भी वो क्षमता है कि समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें?
ये वाकई एक गहरा प्रश्न है और इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।